राघवेंद्र प्रताप सिंह का इंटरव्यू चल रहा था और जब वैदेही ने उससे उसके कॉलेज प्रेसिडेंट बनने के बारे में सवाल पूछा तो वो चुप हो गया। जवाब दीजिए राघवेंद्र जी, क्या ये सच है कि आपसे पहले जो प्रेसिडेंट बना था उसकी 2 दिन में मौत हो जाने की वजह से इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कॉलेज प्रेसिडेंट बनाया गया था? काफी देर चुप रहने के बाद वैदेही ने एक बार फिर पूछा। राघवेंद्र गुस्से से उसे घूर रहा था जबकि आसपास उसके आदमियों ने अपने अपने हथियार तैयार कर लिए थे। आज तो ये रिपोर्टर गई, इसकी हिम्मत कैसे हुई खुलेआम भैया जी से ऐसा सवाल पूछने की? लल्लन ने अपने पीछे गन को लोड कर लिया था। उधर डायरेक्टर बार बार राघवेंद्र को बोलने के लिए इशारे कर रहा था, उसके बावजूद वो बिना कुछ बोले गुस्से में वैदेही को घूर रहा था। स्थिति हाथ से निकलती इससे पहले वैदेही ने कहा, लगता है यहाँ सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई है। जब तक टीम सारी इन इश्यूज को फिक्स करती हैं तब तक रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारा ये इंटरव्यू जारी रहेगा। वैदेही के कहते ही एक बात के लिए इंटरव्यू वहीं रोक दिया गया। सबकी स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट्स चलने लगे। राघवेंद्र की चुप्पी ने लोगों के बीच सस्पेंस को बढ़ा दिया था। सभी की नज़रें टीवी स्क्रीन पर गड़ी हुई थी और वो इंटरव्यू के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। इस इंटरव्यू को देख रहे यशवर्धन और अनंत देसाई के चेहरे पर खुशी की चमक थी। वो राघवेंद्र की कमजोरी अच्छे से जानते थे, ऐसे में वैदेही ने उसकी कमजोर नस को अच्छे से पहचाना था। देखा देसाई जी आपने, हमने कहा था ना वैदेही जी सब संभाल लेंगी। इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन उसके पास्ट में की गई गलतियां कभी ना कभी उसके सामने आ ही जाती हैं, यशवर्धन ने खुश होकर बोला। सही कहा यश बाबू आपने, बहुत अच्छा लग रहा है जब आज वैदेही जी सबके सामने उसके कच्चे चिट्ठे खोल रही हैं, देसाई जी ने जवाब दिया। इंटरव्यू में लिया गया ब्रेक चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि राघवेंद्र अपराधी है, आज उसकी चुप्पी उसे अपराधी घोषित कर रही है। वो सब तो ठीक है लेकिन इन सब की वजह से वैदेही जी कोई मुसीबत में ना पड़ जाए, अनंत देसाई ने चिंता जताते हुए बोला। वो वहां पर अकेली नहीं है, पूरी टीम वहां पर मौजूद है और इतने लोगों के सामने राघवेंद्र कुछ नहीं कर पाएगा, यशवर्धन ने कहा। वो दोनों इंटरव्यू के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे थे तो वहीं उन्हीं की तरह महाराष्ट्र विकास पार्टी के ऑफिस में त्यागी जी कुछ नेताओं के साथ में राघवेंद्र का इंटरव्यू देख रहे थे। हमें समझ नहीं आता कि ये हमें बिना बताए ऐसे इंटरव्यू दे भी कैसे सकते हैं, पहले यशवर्धन तो अब राघवेंद्र। यशवर्धन ने फिर भी स्थिति को संभाल लिया था लेकिन राघवेंद्र का गुस्सा कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, त्यागी जी ने चिंतित स्वर में कहा। ऊपर से सवाल भी ऐसा किया है, अगर इन रिपोर्टर्स में से किसी एक का बाल भी बाका हुआ तो ये लोग उसका तमाशा बना देंगे, माया देवी ने कहा। मेरे होते हुए मैं पार्टी की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा, लोग बेवकूफ नहीं है जो उन्हें नहीं पता कि इस तरह के सवाल के बाद चुप रहने का क्या मतलब होता है, त्यागी जी हल्के गुस्से में बोले। लेकिन हम राघवेंद्र को कुछ कह भी तो नहीं सकते, आज इस पार्टी की जो पोजिशन है वो सब राघव की वजह से ही है, अगर वो नहीं रहा तो पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, एक और नेता ने कहा। उस नेता की बात ने वहां बैठे सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया था, वो लोग सब असमंजस की स्थिति में थे कि क्या किया जाए, साथ ही वो राघवेंद्र के गुस्से से भी अच्छी तरह परिचित थे। ऐसी परिस्थिति में वो अक्सर हथियार उठाने से कभी नहीं चूकता था, अगर मीडिया से जुड़े किसी भी इंसान को कुछ भी होता है तो उनकी पार्टी की रेप्यूटेशन फर्श से अर्श पर आ सकती है। वहीं राघवेंद्र के घर पर जैसे ही वैदेही ने ब्रेक अनाउंस किया राघवेंद्र अपनी जगह से खड़ा हो गया, वो वहां से बाहर आंगन में जाने लगा। स्थिति को संभालने के लिए वैदेही ने उसके पीछे जाना जरूरी समझा। मैं देखती हूँ, बोलकर वैदेही राघवेंद्र के पीछे भाग कर गई। राघवेंद्र बाहर आंगन में मौजूद था, उसने गुस्से में अपनी जीप के कांच पर जोर से मुक्का मारा, मुक्का मारने से शीशा टूट गया, हाथ में कांच लगने की वजह से उसके हाथ से खून आने लगा। वैदेही दौड़कर जल्दी से उसके पास आई, वो फिर से अपना हाथ उसी जगह पर मारता उससे पहले वैदेही ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो आप, उसने गुस्से में कहा। कर तो आप रही हैं वैदेही जी, हमें अच्छे से समझ आ रहा है कि आप इस इंटरव्यू के जरिए हमारी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। हमें नहीं पता कि आपको हमारी कॉलेज लाइफ के बारे में कैसे पता चला, लेकिन आप जनता को आधा अधूरा सच बताकर गुमराह नहीं कर सकती, राघवेंद्र गुस्से में उस पर बिफर पड़ा। तो आप पूरा सच बता दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि आने वाले सवाल थोड़े तीखे और कड़वे होंगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। राघवेंद्र जी, मैंने आपकी छवि नहीं बिगाड़ी बल्कि आपकी चुप्पी ने आपकी छवि बिगाड़ने का काम किया है। अभी भी वक्त है, आप वापस मेरे साथ इंटरव्यू में चलकर अपना पक्ष रखिए। क्या पक्ष रखें हम अपना, हमने कुछ नहीं किया था, बस यही तो जनता को बताना है कि आपने कुछ नहीं किया था, उस वक्त क्या हुआ था आप उसके बारे में उन्हें बता सकते हैं, बस बात खत्म। कई बार चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें च्युइंगम की तरह खींचकर बढ़ा देते हैं। अब आप चलिए मेरे साथ, बोलते हुए वैदेही राघवेंद्र का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। उसने गुस्से में उसका हाथ झटक कर बोला, हमें नहीं जाना वहां पर वापस, हम नहीं जानते कि आप लोगों को क्या कहेंगी और ना ही हमें इससे फर्क पड़ता है, लेकिन हम वापस इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। राघवेंद्र ने अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया।
वैदेही उसे मनाने के तरीके सोच रही थी। तो इसकी एक और कमजोरी ये है कि ये लोगों के सामने अपनी इमेज खराब करना नहीं चाहता। इसके हिसाब से ये जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन लोगों की नजरों में इसकी इज्जत कम ना हो। मुझे कैसे भी करके इसे वापस अंदर ले जाना होगा, वरना आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जा सकती हैं वैदेही जी, राघवेंद्र ने अपने गुस्से को काबू करके बोला। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो सवाल मैंने पूछा था, और मेरे सवाल की वजह से आपकी इमेज खराब हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। इंटरव्यू पिछले 10 मिनट से रुका हुआ है, आप अभी मेरे साथ जाएंगे और अंदर जाकर चीजों को मैनेज करेंगे। जहां राघवेंद्र अंदर जाने को तैयार नहीं था, वहीं वैदेही भी उसकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे समझाने के लिए राघवेंद्र उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के पास लेकर गया और दूसरी तरफ लगे फ्रंट शीशे पर एक और मुक्का मारकर उसे तोड़ दिया। ये क्या किया आपने, आपको पहले से चोट लगी थी, राघवेंद्र ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। वैदेही जी, क्या आप इस टूटे हुए शीशे को फिर से जोड़ सकती हैं, वैदेही ने नामे सिर हिला दिया। राघवेंद्र अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, बस इज्जत भी इसी शीशे की तरह होती है, एक बार टूट जाए तो वो वापस नहीं जुड़ती। आपके सवाल ने हमारी इज्जत को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है, लोगों को तो यही लगेगा ना कि हमने उस लड़के को मार दिया और उसकी जगह पर खुद प्रेसिडेंट बन गए। मैं शीशे को फिर से जोड़ नहीं सकती, लेकिन इसकी जगह एक नया शीशा जरूर लगवा सकती हूँ। राघवेंद्र जी, आप जिस इज्जत के बनने और टूटने की बात कर रहे हैं वो खुद हमारी ही बनाई हुई होती है, और आपकी इज्जत इतनी छोटी है क्या जो मेरे एक सवाल पूछने से टूट गई। वैदेही जी, राघवेंद्र गुस्से में चिल्लाया, मत भूलिए कि आप हमारे घर पर खड़ी हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम बता देते कि हमारी इज्जत कितनी बड़ी है। वैसे देर तो अभी भी नहीं हुई है, आप सबको बता सकते हैं कि आपकी इज्जत कितनी बड़ी है, कहकर वैदेही ने एक बार फिर उसे अंदर चलने का इशारा किया। इस बार राघवेंद्र उसके कहने का मतलब समझ चुका था, वो बिना बहस के अंदर आया। उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी, इसलिए उसने अपना पीछे की तरफ छुपा रखा था।
इंटरव्यू एक बार फिर से शुरू हो चुका था और शुरू करते हुए वैदेही ने कहा, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इंटरव्यू रुक गया था, मैं हमारी टीम और चैनल की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, हमारा पिछला सवाल अभी भी वही है। राघवेंद्र ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट पहनी और जवाब में कहा, हम हमारी जनता का एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहेंगे जो बीच में इंटरव्यू रुकने के बावजूद अब तक हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ तो वैदेही जी, आप जानना चाहती थी ना कि हमसे पहले जो लड़का प्रेसिडेंट बना था उसकी प्रेसिडेंट बनने के कुछ समय बाद मौत हो गई, तो उस परिस्थिति में हमें उसकी जगह लेनी पड़ी। देखिए, जन्म लेना और मरना तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। आपका पता नहीं, लेकिन हमने भगवद गीता बहुत अच्छे से पढ़ी है, जहां इंसान के मरने और जन्म लेने पर उसका कोई बस नहीं चलता। हमें भी उसके मरने का उस वक्त बहुत अफसोस हुआ था और हम वो पद बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट करने पर ही हमने वो पद स्वीकार किया था। राघवेंद्र ने अपनी तरफ से संतुष्टिजनक जवाब दे दिया था, जिसको उसके चाहने वालों ने काफी पसंद भी किया। वैदेही उसकी तरफ एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। उसने राघवेंद्र की तरफ देखकर सोचा, भगवान के नाम पर झूठ बोलने वालों का कुछ नहीं हो सकता। राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनका इंसाफ करने खुद भगवान भी आते हैं, और ऐसा इंसाफ होता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। वो ऊपर वाला ही इस बात का गवाह है कि कैसे तुमने बेरहमी से उस लड़के की जान ले ली थी। वैदेही को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो खुद के गुस्से को काबू करके अभी भी वहां पर शांति से बैठी हुई थी। बिल्कुल सही कहा राघवेंद्र जी ने, जन्म देना और मरना तो सब ईश्वर के हाथ में ही है। अच्छा राघवेंद्र जी, आपने अभी बताया कि आपने भगवद गीता पढ़ी है, इसका मतलब आप भगवान में और उनके इंसाफ में भी मानते होंगे। क्या आप आफ्टर लाइफ, मरने के बाद स्वर्ग और नर्क में बिलीव करते हैं, वैदेही ने अपना अगला सवाल पूछा। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके थ्योरी के हिसाब से चलें तो मरने के बाद अच्छे काम करने वाले को स्वर्ग मिलता है और बुरे काम करने वाले को नर्क, मैं सही हूं ना राघवेंद्र जी? नहीं वैदेही जी, मेरे हिसाब से स्वर्ग और नर्क इस धरती पर ही मौजूद हैं। जैसे आपके कर्म, वैसा ही आपका जीवन। अब देख लीजिए ना, हम जनता की सेवा करते हैं तो भगवान ने हमें उसका बखूबी फल दिया है। आज हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, ये सब उस ऊपर वाले का आशीर्वाद ही तो है, राघवेंद्र ने जवाब दिया। कुछ देर की बातों के बाद एक और ब्रेक अनाउंस कर दिया गया था। ब्रेक में वैदेही कॉफी पी रही थी, राघवेंद्र का ध्यान उसकी तरफ ही था, वो उसे देखकर कुछ सोच रहा था। हम नहीं जानते कि आप यहाँ किस इरादे से आई हैं, लेकिन आपके सवालों में एक बात तो साफ है कि आपके इरादे नेक नहीं हैं। बेहतर यही होगा कि हमसे दूरी बनाकर रखिएगा वैदेही रघुवंशी, वरना इस रावण की लंका में सीता आई तो अपनी मर्जी से है, लेकिन कभी वापस जा नहीं पाएगी। ब्रेक खत्म होते ही इंटरव्यू फिर से शुरू किया गया, लेकिन इस बार राघवेंद्र के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो वैदेही के इरादों को भांप चुका था, ये उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी।